श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप
सारे प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। एक बार फिर आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जी। अकाल पुरख वाहेगुरु गॉड अल्लाह ईश्वर भगवान माधव बीठर निरंकार प्रभु हरि बेअंत नाम जिस दे हन उस लई गुरु साहब जी ने पावन बाणी विच बहुत कुछ कहा है। साहेब सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी ने उस परमेश्वर का स्वरूप मूल मंत्र विच वर्णन किया है। बाणी विच ऐसे भी जिक्र आया है के सोहने नक जिन लंबड़े वाला कंचन कायो सोने की ठाला। ऐसे भी अकाल पुरख वाहेगुरु ले गुरु पातशाह ने बचन कहे ने। उसने इस सृष्टि साजी है साजन लई नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकाश। सृष्टि नु साजन लई उसने खानियां तो कम लिया है। खानियां दी गिनती चार मनी गई है। बाणी च जिक्र आया है अंडज जेरज उत्फुज सेतज तेरे कीते जनता। बाणी न पढ़ के गल विचारनी पैगी के की ए सृष्टि एवें ही चली आती है जान नहीं। जो असी बाणी पढ़ते हाँ इस पवित्र बाणी विच्चों ऐसे शब्द मिलते हैं कि कोई समा ऐसा सी जदों इस सृष्टि होंद विच नहीं सी आई। और बाणी ने उस समय नूं बयान करदिया ऐसे बचन कहे ने कि कुछ भी नहीं सी। एक हनेर गुबार जैसे धुंद है वैसे दिसदा सी। ना दिन सी ना रात सी ना चंद सूरज सन ना कोई जीवां दे आकार सन ना मनुख सी ना पशु ना पंछी कुछ भी नहीं सी केवल धुंद। बड़ा लंबा समा ऐसा हनेर गुबार रहा। कि वो ईश्वर उदों भी मौजूद सी। सतगुरु पातशाह कहते हाँ उस समय भी मौजूद सी। जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखा वख अकेला। अपनी सृष्टि नू रचन वाला ईश्वर, सृष्टि नू रचन तो पहला अते रचन तो बाद भी उसनू वेख रहा सी। वो कैसा है? उस तक पहुंचने लई उनू जानना पेगा। अगर जान गए तो मन लव पहुंच गए, जे समझ ना पाई तो नहीं पहुंच पाए। गुरु पातशाह पावन बाणी विच कथन करदे ने, आप जी ने इक्कीवीं अष्टपदी श्री सुखमनी साहब जी का श्लोक श्रवण किया है। ये गुरुदेव पिता जी कह रहे हैं सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। सरगुण माया दे तीन गुण मने गए हैं। एक नू रजोगुण कहते हैं, एक तमोगुण है, अते एक सतोगुण है। रजोगुण का अर्थ है राजा वाले गुण। राजा वांग हुक्म चलावना, राजा वांग फौजां रखनियां, राजा वांग धन की संचना करनी इकट्ठा करना, शाही ठाठ बाट रखना, ये रजोगुण है। तमोगुण का अर्थ है तम नाम है हनेरे का, हनेरे का गुण। हनेरा तो किसे लिए भी चंगा नहीं, ना किसे राजे लिए, ना किसे गरीब लिए। हनेरे विच कुछ सुझदा नहीं है। बाणी च बचन आए ने अंधकार सुख कब हो ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। हनेरे विच राजा भी परेशान हुंदा है, हनेरे विच कंगाल भी परेशान हुंदा है। हनेरे तो मतलब है अज्ञानता दा गुण। अज्ञानता दे हनेरे विच मनुख प्या घूमदा है। प्रकृति दा पाया हनेरा जेड़ा 12 घंटे बाद अपने आप खत्म हो जाता है, उस हनेरे की गल बाणी नहीं करती। वो तो मुक जाएगा, पर अज्ञानता का हनेरा मुकदया देर लगेगी। अज्ञानता के हनेरे नू हनेरा समझोगे ताई मुक पाएगा। जे उसनू दिन समझ के उस विच विचरदे रहे तां हनेरा नहीं मुकेगा। यूनान दी एक प्रसिद्ध कथा है कि यूनान दे राजे नू ज्योतिषियां दस्या कि इस साल विच तेरे राज विच जिन्ने बच्चे जन्म लेंगे ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਚਾਨਣ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਨੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਦੇ ਤੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਾਸ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਛੁਪਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਲਾਈਟ ਦਿਸੀ। ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਸਤੇ ਦੇਖੇ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੇਖੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਲੋਕ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਸਾਥ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਊਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਸੋ ਆਹੀ, ਆਬਾਧਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੈ ਮਾਮੂਰ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੈ ਜੋ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੁਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਆਓ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਖੋਜ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਓਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਥੰਮ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਵਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, जितना कहे उस विच प्रसन्न हो रहा है। तीसरा गुण है सतो गुण, सतवादियों का गुण, जिन्हें सत नु धारण कर लिया उन्हां दा गुण, चंगियाईयां दूसरे दा भला करना, जिथे जाए बही है भला कही है, झोल अमृत पीज है, गुणा का होवे वासला कडवास लई जाए, पर उपकार नित चितवते नाही कश पोच, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ये सतो गुण है। तो अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु साहब कथन करते ने सरगुण, इन्ना माया दे तीन गुणा दे सर सहित है। माया दे तिने गुण उस दे विच मौजूद ने। दूसरा शब्द आया है निर्गुण। निर्गुण का मतलब है कि माया दे तिना गुणा तो बाहर भी है। निर्गुण शब्द का अर्थ ऐसा भी है कमजोर, बाणी च रविदास जी महाराज ने बचन कहे ने कि एक निर्गुण बैल हमार कमजोर, निर्गुण गुणा तो हीणे नू भी कहिंदे ने, जिस विच कोई गुण ना होए। पर इत्थे क्योंकि शब्द नाल सरगुण आया है, माया दे तिन्ना गुणा रजो गुण तमो गुण ते सतो गुण दे साहित अते माया दे तिन्ना गुणा तो रहत, रजो तमो ते सतो इन्हां तिन्ना गुणा तो रहत भी है और तिन्ना गुणा दे समेत भी है। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला थार जिन सगली मोही। इत्थे आप कहिंदे ने सरगुण निर्गुण निरंकार, ये शब्द है निरंकार निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, सब आकार उसदे ने पर उसका कोई आकार नहीं, चक्र चेहन और वर्ण जात और पात नहन जेहे, रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज, कोट इंद्र इंद्रायण साहे साहान गणिज। निरंकार तेरा रूप न रेख्या जात तू वरना बाहरा, ए मानस जाने दूर तू वरतें जाहरा। निरंकार कोई आकार नहीं जिसका, याद रखियो दुनिया के तमाम मत ये गल कहते ने कि उसनु अनुभव किया जा सकता है, और गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी पढ़ोगे तो गुरुदेव जी कहते उसनु देखा जा सकता है, पेखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़ी है साच, पूर रहे सर्वत्र में नानक हर रंग राज। उनू वेख्या भी जा सकता है, उसनू सुनिया भी जा सकता है, उनू सुनन लई संसार दे शोर नू कन्ना तो दूर करना पेगा ता सुन सकोगे। उसकी आवाज मौजूद है, पर जे संसार वालों कन्ना नू रोकोगे ता सुन पाओगे। बाणी विच ऐसे बचन गुरु पातशाह ने कहे ने कि तेरा सदड़ा सुनी जाए भाई जे को बह अलाए, तेरी आवाज सुन दी है जे कोई संसार तो वख होके बैठ जाए, तू आवाज दिंदा है। और तुसी हैरान होगे ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਉਲਾਂਭੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ, ਜੀਵੰਦੜੋ ਮੋਇਓ ਹੋ, ਜੇ ਤੈਂ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉੱਠ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਤੀ ਸਦੜਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੁੜਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਧਾ ਫਰਮ ਫੁੱਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿੱਠ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੈ ਮੂੰਹ ਖਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਰੀ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਸੁਨ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਸੁਨੰਗ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰਗ, ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰਗ, ਚੌਥਾ ਸੁਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਫਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦਾ ਫਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ कि चरण कमल की मौज में रहो अंत अर आद। पुछया कैसी है वो मौज जिसले तुसी ये गल कह रहे हो, शुरू तो अखीर तक मैं उस मौज में रहा। आप कहने लगे चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कहूंगा तुसी समझ नहीं सकोगे, इस करके इस गल विच कोई शोभा नहीं। जो देखता है उस मौज नूं वो कह नहीं पाउंदा। बस उस विच ऐसी चीज है जो तकेगा वो कह नहीं पाएगा। इस करके अज तक उस मौज नूं किसे ने कहा नहीं। साहब सतगुरु पातशाह कहिंदे समाधि आप, समाधि सुन, समाधि जिथे कोई हरकत नहीं। इसे लई तो मुर्दे दी बनाई गई किसे जगह नूं समाधि कहिंदे ने ना, जिस विच कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। आप कहिंदे ने ओ ईश्वर सुन समाधि आप है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। अतीत विच कदे वो सब कुछ इस तरह सी कि वो सुन समाधि विच टिकिया सी। फिर की होया अगली पंक्ति च कह रहे ने,
आपन किया नानका आपे ही फिर जाप।
फिर उसने इस संसार नु किया, पैदा किया, खंड दीप सब लोआ, एक कवावे ते सब होआ, किता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तिरभवन साजे, घट घट जोत समोए। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। आप ही ओसनु पालन दी विधि जाप जानना है। आप ही उसने पैदा किते, आप ही इन्हां दी प्रतिपालना कीती। अगली पंक्तियां विच कह रहे हैं,
अष्टपदे जब आकार एहो कछ ना दृष्टेता।
उस समय दी अवस्था आप कह रहे ने जदों संसार ते कुछ दिसदा नहीं सी। आप कहंदे ने जब आकार एह कछ ना दृष्टेता, जेड़े अज आकार दिसदे ने, जदों ए आकार कुछ दृष्टि नहीं सी पैंदे, दिसदे नहीं सन, कोई आकार संसार ते नहीं सी। बाणी विच मारू राग विच एक पूरे दा पूरा शब्द गुरु पातशाह ने इस अवस्था लई कहा है। और फिर उसने सृष्टि किवें पैदा कीती ए भी पूरे दा पूरा शब्द कहा है। पर अफसोस इस गल दा है कि असी बाणी नूं खोजण लई नहीं पढ़दे, बाणी नूं पढ़न लई पढ़दे हाँ, कुछ जानण लई नहीं पढ़दे। तो साहिब सतगुरु पातशाह कहिंदे जदों कदे ऐसा समां सी इह आकार कुछ दृष्टि नहीं सी आउंदा, दिसदा नहीं सी। अगली पंक्ति च कह रहे हैं,
पाप पुन तब कहते होता।
पाप पुन तब कहते होता। फिर दसो पाप किस तो होना सी, पुन किसने करने सन। ना कोई पाप सी ना पुन सी, ना कोई इन्हां पाप ते पुन्ना नूं करन वाले व्यक्ति सन, क्योंकि है ही कुछ नहीं सी, आकार कोई दृष्टि नहीं सी आउंदा। ते फिर किस तो पाप हुंदे ते किस तो पुन हुंदा। पाप पुन तब कहते होता, किस पासों पाप ते पुन होने सन। अगली पंक्ति च कहंदे ने,
जब तारी आपना सुन समाद।
जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप ही सुन समाधि धारण कीती हुई सी, आप ओ अफुर अवस्था विच सी, उसका कोई फुरना नहीं सी, ओ सुन समाधि विच स्थित सी, टिकया होया सी।
तब बैर विरोध किस संग कमात।
ता कौन कोई किसे नाल वैर करदा, कौन किसे दा विरोध करदा, ना हो ईश्वर किसे दा वैर करदा है क्योंकि निर्वैर है। किसे दा वैर विरोध तो परे है। वो गुरु साहब कहते उसने सृष्टि पैदा ही नहीं सी की थी, ते जीवा विच वैर विरोध कोई किस नाल करदा, क्योंकि वैर विरोध की कोई गल नहीं सी जदों सृष्टि नहीं सी, फिर वैर विरोध की गल भी नहीं हो सकती।
जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत।
जदों इस जीव का कोई वर्ण वर्ण रंग भी हुंदा है, वर्ण चार वर्ण, तेरा रूप न रेख्या जात तू वरना बाहरा, खत्री ब्राह्मण सूद वैश, ये चार वर्ण मने गए। चेहन चिन्ह आकार कहने लगे, जदों इसका ना कोई रंग दिसदा सी, ना कोई चेहरे दे आकार दिसदे सन, वर्ण चिन्ह ना जापत, जाने ही नहीं सी जांदा जदों कुछ। अगली पंक्ति च कहते हैं,
तब हरक सोग कौ किसे व्यापत।
जदों इसका कोई आकार नहीं सी, वर्ण चिन्ह नहीं सी, ते फिर हरक खुशी किसनू हुंदी, सोग गमी किसनू हुंदी, कहो किसे व्यापत, दसो खां। गुरु साहब कहते किसनू खुशी ते गमी व्यापदी जदों इसका वर्ण चिन्ह कोई है ही नहीं सी।
जब अपन आप आप पार ब्रह्मा।
जदों अपने आप ही पारा रूपी ब्रह्म, अकाल पुरख, वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, अनंत नाम जिस दे हन, जदों ओ आप ही सी, आपे तो आप सी, तो फिर अगली पंक्ति च कहंदे ने,
तब मोह कहा किस होवत परम।
जदों दूसरा कोई है ही नहीं सी, फिर मोह किस नाल हुंदा, जदों दूसरा नहीं तो फिर भुलेखा किसनू किसे गल दा पैंदा, क्योंकि भुलेखा तो तद ही है जब कोई दूसरा है, मोह तद है जब दूसरा है। जदों दूजा है ही नहीं सी, फिर मोह किसदा, मोह कहां, किथे मोह होवेगा, किस होवत भरम, ते भुलेखा किसनू पेगा जदों कोई दूसरा है ही नहीं। अगली पंक्ति च कहंदे ने,
अपन खेल आप वर्ती जा।
उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने खेल नू आप वरताया। वो पिछे भी अपना खेल वरतांदा सी, अज भी आप वरता रहा है। मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर व्यापे। उसने अपना खेल वरताया, अपन खेल आप वरती जा, अपने खेल नू आप वरतावन वाला होया। एक गल याद रखियो, खेल वो हुंदी है जिसनू कला खेलदा है, जिथे दो खेलते ने वह खेल नहीं, उथे जित ते हार आएगी, उथे दुश्मनी पैदा होएगी। बच्चे नू तक रहे ने, उदे पास खिलौने ने, ते कला खेल रहा है, खिलौने नू वटा मार के तोड़ दिंदा, तोड़ के फिर हसदा है, ये खेल है। गुरुदेव जी कहते ने अपनी खेल नू उसने आप वरताया, आपन खेल आप वरतीजा, आप वरताउन वाला होया। फिर उस खेल चो पैदा की होया, निकलिया की उस खेल विचो, आप अगली पंक्ति च कह रहे ने,
नानक करना हार ना दूजा।
कहने सृष्टि दा करण हार कोई दूजा नहीं, ये उसका खेल है। आप पढ़ के आयो ना ऊपर के आपन किया नानका, इस खेल नू रचन वाला कोई दूसरा नहीं, नानक करना है हार ना दूजा, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਣੀ
ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਣੀ।
ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੰਧਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰਾ ਗਮ ਅਪਾਰ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਗਮ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਪਾਰ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ।
ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਰਨਾ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਰਕਾਂ ਚ ਕੌਣ ਪਏਗਾ, ਸੁਰਗਾਂ ਚ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ। ਕਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਬ ਸਿਵ ਸਖਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤਬ ਸਿਵ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ,
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ।
ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ।
डरने वाला भी दूसरा है, डरने वाला भी दूसरा है। तो जब दूसरा है ही नहीं फिर डरेगा कौन, तो डराएगा कौन? सतगुरु जी कह दे
आपन चलत आप करने हार।
चलत बंदा कौतक, वो अपने कौतका नू आप ही करने वाला है।
नानक ठाकर अगम अपार,
वो संसार दा मालक है, मनुख दी गमता तो परे है, वो ईश्वर पारावार तो रहता है, उसका कोई अंत नहीं पा सके। सूजी कहते हैं भाई
अविनाशी सुख आपन आसन।
अविनाशी का अर्थ है नाश तो रहत, जो नाश नहीं होता। धन गुरु पातशाह जी कहते जदों ओ अविनाशी नाश तो रहत परमेश्वर अपने सुख स्थान ते आप विराजमान है, स्थिति विच है, टिकिया होया है। अगली पंक्ति च कहते हैं
तह जन्म मरण कहो कहां विनाशन।
जदों ओ आप अकला है फिर जन्म किसदा होएगा? जब जन्म नहीं तो मौत किसकी होगी? ओ अविनाशी है, विनसेगा कौन? आप कोई विनाश नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मौत नहीं, क्योंकि वो अपने आसन ते आप स्थित है, सुख विच है। वो आप अविनाशी है, अपने आसन ते स्थित है, निज स्वरूप विच विराजमान है। फिर किसी का जन्म नहीं, किसी की मौत नहीं, किसी का विनाश खात्मा नहीं है। अगली पंक्ति च कहते हैं
जब पूर्ण करता प्रभ सोए।
जदों वो सृष्टि का करता रचन वाला ओ प्रभु सोए, आप सोए का अर्थ है ओ परिपूर्ण संसार विच, ओ ईश्वर जदों आप संसार का करता है। गुरु पातशाह जी कह रहे हैं
तब जम की त्रास कहो किस होए।
जदों वो अकला है, दूसरा कोई है नहीं, फिर दसो जमां दी त्रास। त्रास दा अर्थ खौफ, डर। बाणी च बचन आया है कि जे पिंजरा तोते दे विच, तोता पिंजरे दे विच होवे तां उहनूं डर नहीं हुंदा, बिल्ला नहीं खा सकदा। जे सप गरड़ दे मुख होवे, विच होवे तां सप तो डरन दी लोड़ नहीं, क्योंकि गरड़ उसनूं मार देगा। गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास, सूआ पिंजर नहीं खाए बिलास। जैसे आंडो हृदय माहे, जैसे दानो चकी दराहे। तो धन गुरु पातशाह पावन बाणी च कहिंदे ने कि तब जम की त्रास कहो किस होए। जदों वो आप कला है फिर जमां दा डर किसनूं होएगा? जम तो उन्हें पैदा ही नहीं किया, जे उन्हें जम अजे रचया नहीं है, तो फिर जम का खौफ किसनूं होएगा? पाप किसे नूं कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो आप अविनाशी है, उसने रचना संसार दी करनी है, अजे उस रचना कीती नहीं। अगली पंक्ति च कहिंदे हन
जब अवगत अगोचर प्रभ एका।
अवगत का अर्थ है जो जाणिया ना जा सके, अगोचर जो इंद्रियां दी पहुंच तो परे होवे, उन्हूं अगोचर कहिंदे ने। जिवें तुसी कोई चीज देखदे हो कहिंदे दृष्टि गोचर हो गई, आप तुसी अखां नाल वेख ली, इंद्रियां दी पहुंच विच आ गई, कोई गल सुन ली, वह सरवणा गोचर हो गई। तो जो इंद्रियां दी पहुंच तो परे है उन्हूं अगोचर कहिंदे ने। धन गुरु पातशाह जी कहिंदे जदों वह प्रभु जाणिया नहीं जा सकता और इंद्रियां दी पहुंच तो परे है अते एक है, सतगुरु जी कहते हैं
तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
ते फिर चित्र गुप्त किसनू लेखा पूछे भाई? जब दूसरा है ही कोई नहीं, वह विनाशी है, वह संसार दे रचन वाला है, उन्हूं जाणिया नहीं जा सकता, वह इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, कोई कर्म धर्म शुरू नहीं होया। गुरु पातशाह जी कहते किस पूछत लेखा, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, किदे कोलों चित्र गुप्त लेखा पुछे, आप किसे तो लेखा नहीं पूछेगा क्योंकि है ही कोई नहीं।
जब नाथ निरंजन अगोचर गादे,
जदों उस संसार दा नाथ मालक निरंजन माया दी मैल ते अविद्या दी मैल तो रहत, अगोचर इंद्रिया दी पहुंच तो परे, अगाध जिस दा ज्ञान प्राप्त ना कीता जा सके, तनुगुरु पातशाह अगली पंक्ति च कहते हैं,
तब कौन छुटे कौन बंधन बादे।
फिर कौन छुटेगा ते कौन बंधना च बनेगा जदो वो आप ही है, कोई दूसरा नहीं है।
अपन आप ही अचरजा,
तनुगुरु पातशाह कहते हैं वो आप ही है, अपन आप, वो अपने आपे तो आप है, अते आप ही अचरज, आप ही अश्चर्य है। अगली पंक्ति च फरमान कर रहे हैं,
नानक आपन रूप आप ही उपर जा,
उदा अपना रूप है अते आप ही उस रूप नू उपर जा पैदा करने वाला है, अपने आपे तो वो पैदा होया। बाणी विच ऐसा जिक्र आया है कि आप ही न आप साजियो, आप ही न रचियो नाओ, दो ही कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू, तुस देव करै पसाओ, तू जानो ही सब सह, दे लै सह जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। उन्हें अपने आपे तो आपे ने पैदा किया है, नानक आपन रूप आप ही उपर जा, आ सारे उस दे रूप ने, इन्हां रूपां नूं पैदा करने वाला वो आप है। अगली पंक्ति च कहंदे आ,
जह निर्मल पुरख पुरख पत होता,
धन गुरु पातशाह जी कहंदे ने जह जिस जगह ते निर्मल पुरख अकाल पुरख वाहिगुरु पुरख पत तमाम जीवां दा पति मालक, तमाम जीवां दी इज्जत आबरों दा मालक, धन गुरु पातशाह कहंदे जिथे वो निर्मल पुरख आप है,
तह बिन मैल कहो क्या तोता,
उथे तो मैल तो बिना है सब कुछ, उसनु कोई मैल नहीं। बाणी च चिकराया तू निर्मल है ना ही अंधियारा, निर्मल है, निर्मल तो भी निर्मल है। धन गुरु पातशाह जी कहते तह बिन मैल, उथे मैल तो बिना है, कहो क्या धोता, दसो फिर की धोवोगे, कौन धोवेगा, क्योंकि कला ही है। अगर आप निर्मल है उथे कोई किसी ने धोने की लोड़ नहीं पैंदी कि मैला हो गया इनू साफ कर लिया जाए, उथे गुरु पातशाह जी कहते की धोवोगे क्योंकि उदा आकार ही कोई नहीं। अगलिया पंक्तियां च कहते हैं,
जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
जिथे माया मैल ते अविद्या मैल तो रहत, कालख तो रहत, अकाल पुरख वाहिगुरु निरंजन निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, निर्वाण जो हर तरह की आदत तो रहत है, हर तरह के बंधना तो रहत है। अगली पंक्ति च कहते हैं,
तह कौन को मान कौन अभिमान,
दसो उथे किस नू मान इज्जत मिलेगी और किस का अभिमान अपमान होगा, ना उथे किसे की इज्जत है ना किसे का अपमान है, क्योंकि वह अकाल पुरख वाहिगुरु आप है, ओनू कोई मैल व्यापदी नहीं, किस करके उसका अपमान कोई कौन करेगा, ओनू इज्जत देने वाला दूसरा कोई है नहीं, कौन इज्जत देवेगा। अगलिया पंक्तियां च कहते हैं,
जय स्वरूप केवल जगदीश,
कह लगे दुनिया के लोगो जिथे केवल एक जगत ते ईश्वर का स्वरूप है,
तै छल छिद्र लगत कौ कीस,
दसो फिर उथे किसे नु कौन छलेगा, किस विच छिद्र दोष आरोपण करोगे, दोष कहो कीस किस नु लगनगे, ना किसे नु दोष लगनगे ना कोई छड़ेगा किसे नु, क्योंकि वो जगत दा ईश्वर केवल आप है, जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੜੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸਮ ਸਮਾਵੈ।
ਜੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੈ ਕਿਸਹਿ ਭੁੱਖ ਕਵਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ।
ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰਜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ।
ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ।
ਉਸ ਕਰਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਰਵੈ ਮੁਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੋ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ। ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਵੇਦ, ਬਰਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁਕਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਪੇਖਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਹਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤਹਿ ਕਿਸੈ ਭੁੱਖ ਕਵਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੇ ਸੁਮਾਰ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।